अनुमान प्रमाण से ही इनोयम देवदत्तो दीवान भुंगते, इस तरह के वाक्य सुनने पर या इस तरह की स्थिति देखने पर रात्रि भोजन अर्थ जो है प्राप्त हो जाएगा अनुमिति के रूप में, उसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण मानना आवश्यक नहीं है। यह बात कहकर के अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन किया। अब ये सिलेबस के लास्ट में अभाव नाम का जो प्रमाण है उसे भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, उसका खंडन करने जा रहे हैं। कहते हैं ननु अभावाख्यम अपि पृथक प्रमाणम अस्ति। यहाँ पर भी जो मानने वाले हैं पृथक प्रमाण अभाव को, उनका पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभावाख्यम अपि, अभाव आख्या वाला भी, अभाव नाम वाला भी पृथक प्रमाणम अस्ति, पृथक प्रमाण है। तच्च अभाव ग्रहणाय अंगीकरणीयम्। ये जो अभाव नाम का प्रमाण है वह क्यों अंगीकरण करना चाहिए, क्यों स्वीकार करना चाहिए? कहते हैं अभाव ग्रहणाय, अभाव के ग्रहण करने के लिए अभाव नाम का प्रमाण जो है स्वीकार करना चाहिए। तथा ही घटादि अनुपलब्धिया घटादि अभावो निश्चीयते। कहीं जैसे भूतल है तो भूतल पर घट का अगर अभाव है तो घटाभाव का निश्चय कैसे होगा, घटाभाव का ज्ञान कैसे होगा? तो कहते कि घटादि अनुपलब्धिया, घट आदि की अनुपलब्धि होने के कारण घटादि के अभाव का निश्चय होता है। अगर घटादि की उपलब्धि रहेगी तब तो घट भाव का निश्चय होगा, और घट आदि की अनुपलब्धि रहेगी तो घटादि के अभाव का निश्चय होगा। अनुपलब्धिश्च उपलब्धेह अभावः एव। अनुपलब्धि क्या होती है तो अनुपलब्धि का मतलब हो गया उपलब्धेह अभावः, उपलब्धि का अभाव। इति अभाव प्रमाणेन घटादि अभावो गृह्यते। इस तरह से अभाव प्रमाण के द्वारा जो है घटादि का अभाव गृहित होता है, घटादि का अभाव ज्ञात होता है। तो यहाँ जो जिस अभाव प्रमाण की बात की जा रही है उस अभाव प्रमाण का तात्पर्य है अनुपलब्धि को प्रमाण मानना। अनुपलब्धि का अर्थ होता है उपलब्धे है अभाव। तो भूतल पर जो घट के अभाव का निश्चय होता है वो कैसे होता है, अनुपलब्धि को देख करके होता है। अगर घट की अनुपलब्धि रहती है, घट की उपलब्धि नहीं रहती है तो फिर हमें घट के अभाव का ज्ञान होता है। यही जो है पूर्व पक्षी का कहना है, और यह जो है यह प्रत्यक्ष सबके द्वारा संभव नहीं है, इसलिए अभाव को अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता है। उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं तत् ये सही नहीं है, यह भी अनुमान से ही जो है इस घटादि अभाव का निश्चय हो जाएगा, इसके लिए अनुपलब्धि प्रमाण या अभाव प्रमाण को मानने की जरूरत नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि कैसे होगा अनुमान से, कि यदि अत्र घटः अभविष्यत्, यदि यहाँ पर घटा होता तरी तो भूतलम इव अध्यक्षत। तो जैसे ये भूतल दिखाई दे रहा है उसी तरह से घड़ा भी दिखाई देता। इत्यादि तर्क सहकारिणा, इस तरह के तर्क के द्वारा, तर्क के सहकार से, तर्क के सहयोग से अनुपलम्भ सनाथेन प्रत्यक्षेन एव अभाव ग्रहणात्। अनुपलम्भ सनाथेन, अनुपलम्भ माने अनुपलब्धि, अनुपलब्धि के सहारे, अनुपलब्धि के द्वारा, प्रत्यक्षेन एव, प्रत्यक्ष से ही जो है अभाव का ग्रहण हो जाएगा। अभाव ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि मानने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य ये निकला यहाँ कि तर्क करेंगे और तर्क के बाद प्रत्यक्ष के द्वारा जो है उस अभाव का निश्चय हो जाएगा, इसके लिए अनुपलब्धि प्रमाण को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रत्यक्ष से ही काम चल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसके लिए हम अनुपलब्धि को प्रमाण क्यों माने? अब इस पर संदेह उपस्थित किया जा रहा है कि ननु इंद्रियानि संबद्ध अर्थ ग्राहकानि। इन्होंने कहा ना कि प्रत्यक्ष के द्वारा ही जो है अभाव का निश्चय हो जाएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव का निश्चय हो जाएगा, तात्पर्य क्या है कि इंद्रिय के द्वारा ही जो है अभाव का निश्चय हो जाएगा। तो उस पर शंका कर रहे हैं कि इंद्रिय के द्वारा निश्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो इंद्रियानि संबद्ध अर्थ ग्राहकानि, इंद्रिय जो है जो संबद्ध अर्थ होता है उसी का ग्राहक होता है, अर्थात उसी का बोधक होता है। माने इंद्रिय के साथ जिस वस्तु का संबंध होगा उस संबद्ध वस्तु का ही बोध होगा, असंबद्ध वस्तु का बोध नहीं होगा। तथा ही इंद्रियाणि, तात्पर्य यह है कि अभाव के साथ जो है इंद्रिय का संबंध नहीं होता तो इंद्रिय से जो है अभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा, प्रत्यक्ष से अभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि ननु इंद्रियाणि संबद्ध अर्थ ग्राहकानि, इंद्रिय जो है वह संबद्ध अर्थ का ग्राहक है। तथा ही इंद्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी, इंद्रियां जो होती हैं वो वस्तु को प्राप्य माने वस्तु को प्राप्त करके फिर प्रकाशकारी होती हैं माने ज्ञानकारी होती हैं। प्रकाश का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, अप्राप्य मतलब प्राप्त करके या संबद्ध भी कह सकते हैं। तो इंद्रिय जो इंद्रियां जो होती हैं वो अपने से संबद्ध वस्तु का ही ज्ञान करा पाती हैं, ज्ञान करणत्वात्। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान की करण है, करण है मतलब कारण है। तो ज्ञान का करण होने के कारण इंद्रियां जो हैं तब तक ज्ञान नहीं करा सकती जब तक कि ज्ञेय वस्तु के साथ उसका संबंध स्थापित न हो। उदाहरण भी देते हैं, आलोकवत, आलोक कहते हैं प्रकाश को, वत माने तरह की तरह, तो प्रकाश की तरह। जैसे जब तक प्रकाश अंधेरे में किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तब तक वह प्रकाश जो है उस वस्तु को प्रकाशित नहीं कर पाता है, उसी तरह से जब तक इंद्रियां जो हैं किसी वस्तु से संबद्ध नहीं होंगी तब तक जो है उस वस्तु को का ज्ञान नहीं करा पाएंगी। फिर कहते हैं आगे, यदवा अथवा चक्षुः श्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी, ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं मन को लगा करके छह हैं, तो अभी पांच की बात कर रहे हैं। उन पांचों में दो ज्ञानेन्द्रियां ऐसी हैं चक्षु और श्रोत्र, जो दोनों जो है ना सबके मत में, जितने भी आचार्य हुए हैं सब आचार्यों के मत में ये दोनों इंद्रियां जो हैं ये वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी हैं, अर्थात अपने माने अपने से संबद्ध वस्तु का ही जो है ना प्रकाश करती हैं, अपने से वस्तु अपने से संबद्ध वस्तु का ही ज्ञान कराती हैं। जैसे चक्षु है और सामने घड़ा रखा हुआ है, जब तक चक्षु उसको देखेगी नहीं तब तक उस घड़ा का ज्ञान होगा क्या? ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय है, जब तक शब्द को सुनेंगे नहीं तब तक शब्द का श्रवण होगा क्या, शब्द का साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए चक्षु को और श्रोत्र को, इन दोनों को वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी कहा गया है। बहि इंद्रियत्वात्, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां जो हैं ये बहिरिंद्रिय हैं। इंद्रिय दो प्रकार की होती है, अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय। तो मन जो है वह अंतरिंद्रिय है, अंदर में रहने वाली इंद्रिय है, और ये दोनों जो हैं ये बहिरिंद्रिय हैं। त्वगादिवत, त्वक आदि की तरह, जैसे जब तक आपके शरीर में कोई टच नहीं करेगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, ऐसे ही जब तक चक्षु से टच न हो, श्रोत्र से टच न हो, तब तक चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होगा। त्वगादी नाम तु प्राप्य प्रकाशकारित्वम उभयवादी सिद्धमेव, उभयवादी माने दोनों तरह के वाद वाले आचार्य, दोनों तरह के सिद्धांत वाले आचार्य। ये दोनों तरह के सिद्धांत वाले आचार्य का तात्पर्य ये है कि ये जो बहिरिंद्रिय हैं उनमें से कुछ इंद्रियों को लोग जो है ना कुछ विद्वान प्राप्य प्रकाशकारी मानते हैं और कुछ इंद्रियों को कुछ विद्वान जो है प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते, लेकिन त्वगिंद्रिय जो है इसके ऊपर सबकी सहमति है, ये प्राप्य प्रकाशकारी और अप्राप्य प्रकाशकारी दोनों तरह के जो विद्वान हैं आचार्य हैं, उन्होंने त्वगिंद्रिय को जो है ना एक मत से प्राप्त प्रकाशकारी माना है। तो इसलिए त्वगिंद्रिय का ही उदाहरण दिया गया चक्षु और श्रोत्र के लिए। उसी के लिए कहा कि त्वगादि नाम तो त्वगादि इंद्रियां जो है उसमें प्राप्य प्रकाश कारित्वम, ये जो भाव है प्राप्य प्रकाश कारित्व वाला भाव, ये उभयवादी सिद्धम एवं ये दोनों टाइप के आचार्यों के मत में सिद्ध है। न च इंद्रिय अभावयोः संबंध अस्ति। आपने जो कहा कि प्रत्यक्ष से अभाव का ज्ञान होगा वो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है संबद्ध का ज्ञान कराती हैं, और यहाँ इंद्रिय अभावयोः न संबंध अस्ति। इंद्रिय जो है अभाव का इसलिए नहीं ज्ञान करा पाएगी क्योंकि इंद्रिय के साथ अभाव का संबंध होता ही नहीं है। ताकि संबंध नहीं होता है कैसे? ताकि ऐसा है, प्रसिद्ध संबंध है संयोग संबंध और समवाय संबंध। तो ये दोनों संयोग और समवाय संबंध जो है इंद्रिय का अभाव के साथ नहीं हो सकता। वही कहा संयोग समवायो ही संबंध हो, यही दो संबंध प्रसिद्ध संबंध है। नौ च तौ तयोह स्तः, ये तौ माने ये दोनों संयोग और समवाय, तयोह माने इंद्रिय अभावयोह, नौ स्तः इंद्रिय अभाव के ये दोनों संबंध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो द्रव्ययोह एव संयोगः इति नियमात्, ऐसा नियम है कि संयोग संबंध कहाँ होता है? तो द्रव्ययोह एव, दो द्रव्यों के बीच में ही संयोग संबंध होता है। तो इंद्रिय तो द्रव्य है लेकिन अभाव तो द्रव्य नहीं है, तो द्रव्ययोः एव संयोगः, ऐसा नियम होने के कारण दो द्रव्यों के बीच में ही संयोग संबंध होता है। इस नियम के कारण इंद्रिय और अभाव में संयोग संबंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभाव जो है वह द्रव्य नहीं है। वही कहा अभावस्य च द्रव्यत्व अभावात्, अभाव में द्रव्यत्व का अभाव है। तो कहा कि ठीक है, संयोग नहीं हुआ इसलिए क्योंकि अभाव द्रव्य नहीं है। समवाय क्यों नहीं होता? कहा कि अयुत सिद्धत्व अभावात् न समवाय अभी, क्योंकि आप जानते हैं कि समवाय संबंध कहाँ होता है? जो अयुत सिद्ध होता है, माने एक दूसरे के बिना भी जो सिद्ध रह सके उसमें जो है समवाय संबंध माना जाता है। एक दूसरे के बिना जो सिद्ध न रह सके, जैसे तंतु और पट, तंतु के बिना पट नहीं हो सकता। हो सकता क्या? अगर तंतु न हो, सूत न हो, तो सूती वस्त्र कैसे होगा? तो इस तरह से जहाँ पर अयुत सिद्ध होता है वहीं पर समवाय संबंध होता है। ये जो है ना ये तो युत सिद्ध है, क्योंकि इंद्रिय की सिद्धता के लिए अभाव का होना जरूरी नहीं है, और अभाव की सिद्धता के लिए इंद्रिय का होना जरूरी नहीं है। तो अयुत सिद्धत्व के अभाव के कारण इसमें इंद्रिय और अभाव के बीच समवाय संबंध भी नहीं हो सकता। इस पर कह रहे हैं कि एक और संबंध है जो संबंध की दोनों में होता है, किसमें? इंद्रिय और अभाव में। वह कौन सा संबंध है? तो वह है विशेष विशेषण भाव संबंध। विशेष विशेषण भाव संबंध इंद्रिय और अभाव में कैसे होता है उसकी बात मैं समझाता हूँ। मैं दो प्रयोग बोलता हूँ, एक है भूतलम घटा भाववत, मतलब हुआ कि भूतल घटा भाव से विशिष्ट है, युक्त है। भूतलम घटा भाववत। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा दूसरा वाक्य में फिर मैं बोलता हूँ, भूतले घटा भाव के घटा भाव भूतल से विशिष्ट है, ये अर्थ हुआ। तो भूतलम घटा भाववत और भूतले घटा भाव, इसमें पहला जो है भूतलम घटा भाववत, इस ज्ञान में घटाभाव विशेषण है और भूतल विशेष्य। क्योंकि क्या अर्थ किया भूतलम घटा भाववत का? भूतल घटाभाव से विशिष्ट है। तो विशिष्ट जो होता है वह विशेष्य होगा। कौन है विशिष्ट? भूतल। तो भूतल विशेष्य हो गया, और किससे विशिष्ट है? घटाभाव से विशिष्ट है। तो जिससे विशिष्ट है वह विशेषण हो गया। तो भूतलम घटाभाववत में हमने देखा कि घटाभाव विशेषण है और भूतल विशेष्य है। इसी तरह से भूतले घटाभाव में इसके विपरीत है, भूतल विशेषण है और घटाभाव इसमें विशेष्य है। तो यहाँ अभाव में आपने देखा, अभाव के साथ जो है भूतल का कौन सा संबंध है, विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। और इस विशेष विशेषण भाव संबंध से इंद्रिय और अभाव जो है ना एक दूसरे से युक्त हो जाएगा। और इस संबंध से युक्त होने के कारण ये जो आपने आपत्ति दी थी कि इंद्रियां संबद्ध वस्तु को ही प्रकाशित करती हैं, असंबद्ध को नहीं करती, ये तो यह प्रमाणित हो जाता है कि ये भी संबद्ध, दोनों संबद्ध हैं। किस संबंध से संबद्ध हैं? विशेष विशेषण भाव से संबद्ध हैं इंद्रिय और अभाव। और संबद्ध होने के कारण इंद्रिय से ही अभाव का ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए अनुपलब्धि या अभाव नाम के प्रमाण को पृथक प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब कहा समाधान कर्ता ने, उत्तर पक्षी ने, इस पर पूर्व पक्षी फिर खंडन करता है, कहता है कि विशेष विशेषण भावश्च संबंध एवं न संभवते। कहा कि आपने जो अभी ये कहा ना कि विशेष विशेषण भाव संबंध होता है इंद्रिय और अभाव के बीच में, तो ऐसा है कि इस तरह का संबंध कहलाएगा ही नहीं, इस तरह का संबंध कोई होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है? तो इस पाठ को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। आज यहाँ तक की बात को अपने मन में सेट करना है। अगर प्रश्न परीक्षा में आता है, कुछ विद्वानों की आदत होती है कि सिलेबस के लास्ट में जो रहता है वही पूछ देते हैं, तो सिलेबस के लास्ट में ये है कि अभाव पृथक प्रमाण है या नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं। तो अभी तक जितनी चर्चा हुई है वो चर्चा जरूर आपको समझ में आ गई होंगी। आगे का थोड़ा सा कठिन पाठ है, तो उसको सुनिएगा जरूर, समझने की कोशिश जरूर करनी है। समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी बात भी अगर आप लिख देंगे तो अंक आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर अगले पाठ में पढ़ते हैं।